आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। आसाम, केरलम और पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। बीजेपी ने मगरबी बंगाल और केरलम असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। एलडीएफ ने भी केरलम इंतखाबात के लिए पहली फहरिस्त जारी की है। एनडीए ने बिहार से राज्यसभा की तमाम पांचों सीटों पर जीत हासिल की है। उड़ीसा में बीजेपी ने दो, बीजेडी और आजाद उम्मीदवार ने एक एक सीट हासिल की है। हरियाणा में दो सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। 46,000 मैट्रिक टन एलपीजी से भरा भारतीय बहरी जहाज शिवालिक आब नाए हुरमुज को पार करने के बाद गुजरात की मुंद्रा बंदरगाह पहुंच गया है। एक और बहरी जहाज नंदा देवी कल पहुंचेगा। बरतानिया का कहना है कि वो मगरबी एशिया में बड़ी जंग में शामिल हुए बगैर आब नाए हुरमुज को दोबारा खोलने की गरज से इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। 2025 के लिए साहित्य अकेडमी इनामात का ऐलान कर दिया गया है। इनाम याफ्तगान में सरकर्दा हिंदी मुसन्निफ ममता कालिया को उनकी तख्लीक जीते जी इलाहाबाद और सिफारतकार नौतेज सरना को उनके अंग्रेजी नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए अवार्ड दिया जाना शामिल है। अब खबरें तफसील से। आसाम, केरलम और पुदुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। इन रियासतों में असेंबली इंतखाबात के प्रोग्राम का कल तमिलनाडु और मगरबी बंगाल के साथ ऐलान किया गया था। आसाम, केरलम और पुदुचेरी में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी चार रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 4 मई को वोटों की गिनती होगी। आज बीजेपी ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए 144 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने अपोजिशन के रहनुमा सुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भिवानीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा एमएलए अग्निमित्र पॉल आसनसोल दक्षिण से चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा के सबक रुकने पार्लियामेंट दिलीप घोष खड़गपुर सादर से और राज्यसभा के सबक रुकन पार्लियामेंट स्वप्न दास गुप्ता रासबिहारी से चुनाव लड़ेंगे। मगरबी बंगाल की 294 रुकनी असेंबली के लिए आइंदा माह की 23 और 29 तारीख को दो मरहलों में वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। केरलम में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की कयादत वाले एनडीए और सीपीएम की कयादत वाले एलडीएफ ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। बीजेपी की फहरिस्त में 47 उम्मीदवार शामिल हैं। मरकजी वजीर जॉर्ज कुरियन कंजीरापल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पार्टी के रियासती सदर और साबिक मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर नैमम से इंतखाबी मैदान में हैं। एलडीएफ ने 75 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इनमें वजीर आला पिनरई विजयन और वजीर खजाना के एन बालगोपाल शामिल हैं। केरलम की 126 रुकनी असेंबली के लिए आइंदा माह की 9 तारीख को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने बिहार से राज्यसभा की तमाम 5 सीटों पर जीत हासिल की है। जीतने वाले उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के नितिन नबीन और सुरेश राम, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। जीतने वाले तमाम उम्मीदवारों ने राज्यसभा में अपने इंतखाब को यकीनी बनाने के लिए मतलूबा तादाद में वोट हासिल किए हैं। अलबत्त नतीज का सरकारी तौर पर ऐलान किए जाने का अभी इंतजार है। ओडिशा से राज्यसभा के नतीज का ऐलान आज ऐलान कर दिया गया। इनमें 4 उम्मीदवार करीबी मुकाबले में फाते हुए। जनाब मनमोहन समल और जनाब सुजीत कुमार ऐवानेवाला के लिए बीजेपी के नामजद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए हैं। साबिक मरकजी वजीर दिलीप रे ने भी, जिनकी हिमायत बीजेपी कर रही थी, आजाद उम्मीदवार के तौर पर काबिले जिक्र जीत दर्ज की है। उन्होंने डॉक्टर दत्तेश्वर हुड्डा को शिकस्त दी, जो कि बीजेडी, कांग्रेस और सीपीआईएम के मुश्तरका उम्मीदवार थे। बीजेडी के जनाब संतृप्त मिश्रा को भी मुंतखब करार दिया गया है। उनका इंतखाब ऐवानेवाला में इलाकाई पार्टी की जारी नुमाइंदगी को यकीनी बनाता है। हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। यहां से तीन उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि एक आजादाना उम्मीदवार है। बीजेपी ने साबिक रुकने पार्लियामेंट संजय भाटिया को, जबकि कांग्रेस ने करमवीर बौद्ध को चुनाव मैदान में उतारा है। सतीश नंदल आजाद उम्मीदवार हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय बहरी जहाज शिवालिक मगरबी एशिया में जारी जंग के दौरान आबनाए हुरमुज को पार करने के बाद 46,000 मेट्रिक टन एलपीजी के साथ आज शाम गुजरात की मुंद्रा बंदरगाह पहुंच गया। नई दिल्ली में मगरबी एशिया में हालिया सूरतेहाल से मुतालिक बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी शाहराहों की वजारत में खसूसी सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि एलपीजी से भरा एक और भारतीय बहरी जहाज नंदा देवी कल भारत पहुंचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि एक भारतीय झंडा बरदार बहरी जहाज जाग लाटकी जो मुत्तहिदा अरब अमारात से रवाना हुआ था, वो बहिफाजत भारत की राह पर गामजन है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने मुतला किया कि खाम तेल इत्मीनान बख्श मकदार में दस्तियाब है और मुल्क भर में तमाम रिफाइनरीज अपनी आला तरीन सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए की जाने वाली फराहमी में गुजश्ता महीने 53% से इजाफा होकर ये अब 72% हो गई है।
हम बार बार कंज्यूमर से अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग करें, उसकी वजह से ऑनलाइन बुकिंग में इंक्रीज हुआ है और कल के डाटा के हिसाब से लगभग 90% बुकिंग्स हैव बीन ऑनलाइन। एक और इनिशिएटिव जो हम इस वक्त पुश करना चाह रहे हैं वो है डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। सो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के नंबर्स में भी इम्प्रूवमेंट आया है, जो पहले 53% हुआ करता था, कल वो 72% था।
वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ईरान में लगभग 550 भारतीय बाशिंदे जमीनी सरहद के जरिए आर्मेनिया पहुंच गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान से 90 भारतीय बाशिंदे जमीनी सरहद के जरिए आजरबाईजान पहुंचे हैं और ये कार्रवाई तेहरान में भारतीय सिफारतखाने के जरिए की गई है। वजारत खारजा में खलीजी उमूर के ज्वाइंट सेक्रेटरी असीम महाजन ने बताया कि पिछले महीने की 28 तारीख से इस खत्ते से लगभग 2,20,000 अफराद भारत वापस आ चुके हैं। राज्यसभा में आज अखराजात से मुतालिक बिल 2026 पर बहस हुई। ये बिल माली साल 2025-26 में खिदमात के लिए भारतीय मजमुई फंड्स में से मजीद मखसूस रकम की अदायगी और अखराजात को यकीनी बनाता है। लोकसभा ने गुज़श्ता हफ्ते पहले ही इस बिल को मंजूर कर लिया था, हालांकि बहस नामुकम्मल रही। कल ऐवान-ए-बाला में अखराजात से मुतालिक बिल 2026 पर बहस जारी रहेगी। आज की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई कल दिन में 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज लोकसभा में बजट इजलास के दूसरे मरहले में पहली मरतबा वक्फे सवालात की कार्रवाई बिला रुकावट चली, जिसमें अपोजिशन अरकान की जानिब से बार बार एहतजाज के सबब रखना पैदा हो रहा था। वक्फे सवालात के बाद ऐवान में रेलवे की वजारत की जानिब से ग्रांट्स के मुतालबात पर बहस हुई। ये बहस नामुकम्मल रही। बाद में ऐवान की कार्रवाई कल दिन में 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज मामूल की कार्रवाई हुई। लोकसभा में 2026-27 के लिए रेलवे की वजारत के तहत ग्रांट्स के मुतालबात पर बहस हुई। बहस के दौरान हिजब इख्तदार और अपोजिशन दोनों के बहुत से अराकीन पार्लियामेंट ने अपने नजरियात पेश किए। इससे कबल वक्फा सवाल के दौरान वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हुकूमत जल्द ही स्टैंड अप इंडिया स्कीम का एक नौ तश्कील शुदा विजन पेश करेगी, जिसका मकसद मुल्क भर में दर्ज फहरिस्त जातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल और खवातीन कारोबारियों को ज्यादा फवायद फराहम कराना है। राज्यसभा में अखराजात से मुतालिक बिल 2026 पर बहस हुई और बहस में मुख्तलिफ पार्टियों के बहुत से अराकीन ने हिस्सा लिया। वक्फा सिफर के दौरान राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुल्क में एलपीजी के मुबैना बहरान का मामला उठाया। इसका जवाब देते हुए ऐवान के लीडर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सियासत करने और इस मामले में अफरा तफरी पैदा करने का इल्जाम लगाया। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टामर ने आज कहा कि बरतानिया आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने की गरज से इत्तेहादियों के साथ एक मंसूबे पर काम कर रहा है, अलबत्ता वो बड़ी जंग में शामिल नहीं होगा। وزیر اعظم اسٹارمر نے یہ بات آج ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی. انہوں نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے یہ کہنے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ امریکی اتحادی تیل کی جہاز رانی کے اس کلیدی روٹ کو کھولنے کے لیے جنگی بحری جہاز بھیجیں. جناب اسٹارمر نے کہا کہ برطانیہ امریکہ اور یورپ کے اتحادیوں اور خلیج کے ساتھ مائن ہنٹنگ استعمال کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کر رہا ہے جو خطے میں برطانیہ کے پاس موجود ہیں. البتہ انہوں نے اندیا دیا کہ برطانیہ کوئی جنگی جہاز نہیں بھیجے گا. برطانیہ اور جرمنی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو کے لیے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے کہ مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی جنگ کے دوران آب نائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے مدد کریں. یہ جنگ امریکہ اسرائیل کے ذریعے ایران پر حملے کے ساتھ شروع ہوئی تھی. انہوں نے زور دیا کہ یہ جنگ اتحاد کے لیے کوئی مشن نہیں ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج سہ پہر یوروپی کمیشن کی صدر ارسولا فون ڈیر لائن سے بات کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس سال جنوری میں یوروپی کمیشن کی صدر کا بھارت کا انتہائی کامیاب سرکاری دورہ بھارت اور یوروپی یونین کے درمیان تعلقات میں ایک اہم موڑ ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اس کی بھرپور طریقے سے پیروی کر رہا ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے حالیہ عالمی صورتحال سے متعلق محترمہ لائن کے نظریات کی ستائش بھی کی. ساہتیہ اکیڈمی نے آج 24 بھارتی زبانوں میں سال 2025 کے اپنے سالانہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈز کا اعلان کر دیا ہے. ممتاز جیوری ممبران کی سفارشات پر دیے جانے والے اس ایوارڈ کو ساہتیہ اکیڈمی کے حکام کی منظوری حاصل ہے. یہ ایوارڈز اس ماہ کی 31 تاریخ کو نئی دلی میں پیش کیے جائیں گے. مزید تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے.
اس سال 8 شعری مجموعے، 4 ناولوں، 6 افسانوی مجموعوں اور 2 مضامین کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 2025 سے نوازا جائے گا. اس کے علاوہ ایک ادبی تنقید، ایک خود نوشت سوانح اور 2 یادداشت پر مبنی تخلیق بھی اس ایوارڈ کے لیے منتخب کی گئی ہیں. اردو شعری مجموعے سفر جاری ہے کے لیے پرتپال سنگھ بیتاب کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا. دیگر انعام یافتگان میں آسامی زبان کے ناول کرہی کھیلار سادھو کے لیے دیوبرت اور بنگالی شاعری شریشٹھ کویتا کے لیے پرسن بندوپادھیائے کو شامل کیا گیا ہے. انعام یافتگان کو 1,00,000 روپے اور نقش شدہ تانبے کی تختیاں بھی پیش کی جائیں گی. شیوانگ مشرا اور بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کل ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورا میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. IMD کے مطابق جھارکھنڈ، آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، مہاراشٹر، اڈیشا، تلنگانہ، مغربی بنگال اور سکم میں آئندہ 2 روز تک اسی طرح کا موسم رہے گا. بیڈمنٹن کے سینئر کھلاڑی کدامبی سری کانت اور نوجوان کھلاڑی آیوش شیٹی نے تنوی شرما کل سے فرانس میں شروع ہونے والے اورلینز ماسٹرز سپر 300 ٹورنامنٹ کے مقابلے میں بھارت کی قیادت کریں گے. ایک اور سینئر بیڈمنٹن کھلاڑی ایچ ایس پرنوئے پچھلے ہفتے باسل میں سوئس اوپن کے دوران کندھے میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے تھے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. آسام، کیرلم اور پدوچیری میں اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے. بی جے پی نے مغربی بنگال اور کیرلم اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی ہے. ایل ڈی ایف نے بھی کیرلم انتخابات کے لیے پہلی فہرست جاری کی ہے. این ڈی اے نے بہار سے راجیہ سبھا کی تمام 5 سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے. اڈیشہ میں بی جے پی نے 2، بی جے ڈی اور آزاد امیدوار نے 1-1 سیٹ حاصل کی ہے. ہریانہ میں 2 سیٹوں کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے. 46,000 میٹرک ٹن ایل پی جی سے بھرا بھارتی بحری جہاز شیوالک آب نائے ہرمز کو پار کرنے کے بعد گجرات کی مندرا بندرگاہ پہنچ گیا ہے. ایک اور بحری جہاز نندا دیوی کل پہنچے گا. برطانیہ کا کہنا ہے کہ وہ مغربی ایشیا میں بڑی جنگ میں شامل ہوئے بغیر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی غرض سے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور 2025 کے لیے ساہتیہ اکیڈمی انعامات کا اعلان کر دیا گیا ہے. انعام یافتگان میں سرکردہ ہندی مصنف ممتا کالیا کو ان کی تخلیق جیتے جی الہ آباد اور سفارتکار نوتیج سرنا کو ان کے انگریزی ناول کرمسن اسپرنگ کے لیے ایوارڈ دیا جانا شامل ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.